मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 13 फरवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही दोस्तों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 11 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सांवर प्रीत सिंह, श्री मुक्तसर साहिब पंजाब से, बलवीर कुमार आपका गांव है रतन जिला खगड़िया बिहार से, प्रशांत त्रिवेदी जौनपुर उत्तर प्रदेश से, आभा सिंह पटना बिहार से, नितेश कुमार दुमका झारखंड से, आलोक राज आपका गांव है नोनीहाट जिला दुमका झारखंड से, नफीस पुनहाना हरियाणा से, राधिका शर्मा अशोकनगर मध्य प्रदेश से, विशाल शर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से, कपिल रावत सागर मध्य प्रदेश से और सोनल राठवा बड़ोदरा गुजरात से। तो सांवरप्रीत, बलवीर, प्रशांत, आभा, नितेश, आलोक, नफीस, राधिका, विशाल, कपिल और सोनल आप सभी 11 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों एक सूचना है और इसे आप महत्वपूर्ण सूचना भी कह सकते हैं और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 3 से 17 मार्च के बीच आने का प्लान कर रहे हैं, मतलब प्लान कर ही नहीं लिया है, मतलब प्लान कर रहे हैं और इस दुविधा में हैं कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों उनके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि यदि आप आने के इच्छुक हैं तो फिर अब आपको चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन करा लें, क्योंकि अब कभी भी ये एडमिशन क्लोज किए जा सकते हैं। मित्रों मैं रिपीट कर रहा हूं कि यदि आप आने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप इसके बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय ले लें, और अगर निर्णय पक्ष में है तो आप जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन करा लें, क्योंकि कभी भी एडमिशन क्लोज किए जा सकते हैं। दोस्तों जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनसे मैं कल बात करूंगा और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें करूंगा, तो आज से ही मैं एडवांस में उनके लिए ये जानकारी दे देता हूं कि प्लीज कल के डेली ऑडियो लेक्चर को आप बिल्कुल भी मिस न करें। हालांकि मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि क्लास में आने वाले स्टूडेंट के लिए एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि ये अनिवार्य है, आप चाहे इसे निर्देश मान लें या एकेडमी के द्वारा दिया गया आदेश मान लें जो भी, कि आपको डेली ऑडियो लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप लाइफ मैनेजमेंट में भी निरंतरता को बनाए रखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी और बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन उससे आपके दिमाग की बन सकेगी, ताकि जब आप क्लास में आए तो उसका बहुत अच्छे से और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों आज के मुख्य विषय में मैं पिछले 2 दिनों से जिस टॉपिक को लेकर चल रहा हूं, उत्तर लिखने के ढंग को, जो सबसे बड़ी आपकी चुनौती है, उसे ही आज मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि बीच में अगर मैं गैप दे देता हूं तो डेफिनेटली उससे जो निरंतरता भंग होती है तो जो मैं बता रहा हूं उसका प्रभाव धीमा पड़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैं उसी विषय पर बात करूंगा। लेकिन पहले मैं थोड़ी सी 2 खबरों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। एक है फ्रेंड्स वित्त विधेयक के बारे में, आपने न्यूज में सुना कि वित्त विधेयक जो भी है वो पारित कर दिया गया। मैं इसके बारे में भी कुछ आपसे बताने नहीं जा रहा हूं। एक होता है वित्त विधेयक और एक होता है धन विधेयक, है ना, मनी बिल और फाइनेंस बिल। मैं चाहूंगा कि इसको आप समझने की कोशिश करें। आपके पास बुक्स ऑलरेडी है ही हैं इससे रिलेटेड, आप वो बुक पढ़ें और इनके अंतर को पढ़ने की कोशिश नहीं करें, कि बात मैं नहीं कह रहा हूं कि पढ़ने की कोशिश करें, वो न करें, पढ़ने को केवल एक माध्यम बनाएं बस, और समझने की कोशिश करें। याद रखिए कि पढ़ना समझने का मात्र एक माध्यम है, अपने आप में उद्देश्य नहीं है, और रटना तो बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप अपनी तरफ से समझने की मेहनत करें। ये मैं जानबूझ करके ये बात कह रहा हूं कि ये वित्त विधेयक क्या होता है और ये धन विधेयक क्या होता है, ये आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होना भी चाहिए। इनके क्या प्रोविजंस हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है, एक तो आप पढ़ लेंगे कि ये क्या होते हैं, लेकिन दोनों में और क्या क्या अंतर है, कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया, किस तरह के प्रोविजंस किए गए हैं, इन सबको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। और संभव हुआ तो फिर मैं इसके बारे में आपको बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अंडरलाइन कर रहा हूं संभव हुआ तो, यानी कि जो दूसरी घटनाएं हो रही हैं उन्होंने अगर मुझे इजाजत दी तो फिर मैं इस पर आगे चलकर कभी बात आपसे करूंगा। फ्रेंड्स, एक खबर आपने आज के अखबारों में पढ़ी होगी और वो है जो हमारे सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव जी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक सजा दी। सजा केवल ये दी कि वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय तक बैठे रहेंगे, और ये सजा उनको दी किस लिए गई, इसलिए कि जो उन्होंने एक ट्रांसफर किया था, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हमने क्रक्स पर आते हैं, उन्होंने एक अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया था, वो अधिकारी एक मामले की जांच कर रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि उसका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो उसकी जांच कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर कोई जांच कर रहा है, सामान्यतया हो सकता है कि ऐसा न भी हो, लेकिन उससे प्रतीत होता है कि अगर कोई किसी चीज किसी घटना की जांच कर रहा है और उस अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया जाता है अचानक, तो ये एक तरह से कह लीजिए कि ये संदेश जाता है लोगों में कि शायद नहीं चाह रही है सरकार या प्रशासन कि सही तरीके से जांच हो, या अपने फेवर में वो जांच चाह रही है कि जैसा हम चाहते हैं आप उस तरह की रिपोर्ट दो, और जब उसे लगता है कि नहीं ये अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहा है तो ये अधिकार आपके हाथ में है कि आप उनका ट्रांसफर कर दीजिए, दूसरे अपने आदमी को वहां बैठा दीजिए, वो आपके हिसाब से रिपोर्ट दे देगा। इसी बात को ध्यान में रख करके कभी कभी कोर्ट इस तरह के निर्देश देते हैं, तो इन्होंने बेसिकली आप ये कह लीजिए कि कोर्ट की अवमानना की थी, यानी कोर्ट के आदेश की अवमानना की थी, तो कोर्ट के आदेश की अवमानना करने के सजा के बतौर उन्हें कोने में बैठाकर रखा गया। देखिए, होता क्या है कि ये सजा तो वैसे बड़ी छोटी सी है, सामान्य आदमी को बताई तो बोले अरे उसमें क्या हो गया यार, ठीक है थोड़ी देर बैठ लिए, उसमें क्या फर्क पड़ गया, ये भी कोई सजा होती है क्या, जेल वेल भेज देते कुछ दिनों के लिए तब तो मानते सजा, या कुछ जुर्माना उर्माना लगा देते 10-15-20 हजार का, तब तो कोई सजा भी होती। मित्रों, याद रखिए कि ये जो सजा है ये नागेश्वर राव जी को दी गई सजा नहीं है, ये सीबीआई के अंतरिम निदेशक को दी गई सजा है, यानी कि ये प्रशासन के एक बहुत उच्च अधिकारी को दी गई एक सजा है, मतलब तभी आप उनके अर्थों को समझ सकेंगे, तो ये अपने आप में मायने रखती है। और सजा फिर चाहे छोटी हो या बड़ी हो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, सजा फिर सजा होती है। इस रूप में हमें इस घटना को देखना चाहिए, और फिर आप देख रहे हैं कि कैसे लगातार सरल से प्रशासनिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश देने पड़ रहे हैं, जनहित याचिका के तहत लोग वहां जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनका निपटारा करता है, उनके बारे में अपने फैसले सुनाता है। तो दोस्तों, सच पूछे तो अब ये लगने लगा है कि फिर प्रशासन है कहां, कहां हम प्रशासन को ढूंढें, क्या प्रशासन सच में इतना पंगु हो चुका है, अनिर्णय की स्थिति में आ चुका है, या कह लीजिए कि उसके सामने रूल्स रेगुलेशन की कोई वक्त ही नहीं रह गई है, वो बिल्कुल अपने मन से ही सब कुछ करता है। ये एक बहुत उभरता हुआ ज्वलंत प्रश्न है जो लोगों को सच पूछिए तो बहुत ही चिंता में लगातार डालता चला जा रहा है कि ये क्या हो रहा है। और इसके लिए आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक सक्रियता है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, एक पक्ष हो सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष मित्रों यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, लोग उसके पास जा रहे हैं। लोग क्यों जा रहे हैं, अगर लोगों को लगे कि प्रशासन से उन्हें न्याय मिल जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो वहां नहीं जाएंगे। तो इसमें दोनों ही पक्ष हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो लगातार एक बर्निंग टॉपिक की तरह आपके सिलेबस में मौजूद है, और इस पर बकायदे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और यहां मैंने जो इस तरह की घटना की चर्चा की, जैसे भी नागेश्वर राव जी वाली घटना की, इस तरह की घटनाओं की उपयोगिता केवल यही होती है दोस्तों कि जब उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप लेटेस्ट इवेंट को एग्जाम्पल के रूप में कोट करें, जो नवीनतम घटना हो सकती है उसकी आप चर्चा करें, तो उससे जो है आपके उत्तर में एक अलग तरह की चमक आ जाती है। फ्रेंड्स, आइए अब मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूं, और वह हम लोग बात कर रहे थे उत्तर लिखने की क्या क्या चुनौतियां होती हैं। अब आप देखिए कि होता क्या है, मैं अब आपको एक मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। हम प्रश्न पढ़ते हैं, राइट, और प्रश्न पढ़ने के बाद हम उत्तर लिखते हैं। मैं अभी तक इस बात पर चर्चा कर रहा था कि उस प्रश्न को हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं और उत्तर लिखने लग जाते हैं। अब सवाल यह है कि हम उस प्रश्न को ठीक से समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, इसमें क्या मनोवैज्ञानिक परेशानी है? भाषा है, भाषा सरल है, भाषा हमारी समझ में भी आ रही है, उसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका हम अर्थ नहीं जानते, पूरे के पूरे वाक्य भी हमारे दिमाग में आ रहे हैं, तो फिर हम उसे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? मित्रों, यहां एक आप दिमाग की स्थिति को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। होता यह है कि हमें समझ में केवल वही चीजें आती हैं जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद होता है, वही हम समझ पाते हैं। हालांकि ये बड़ी विचित्र सी बात लगेगी, हर चीज के बारे में उतना नहीं है। मैं अभी चूंकि सिविल सर्विस के क्वेश्चंस के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो मेरी बातों को आप यहीं तक सीमित रखें, है ना, उसको जनरलाइज मत कर दीजिएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप हिंदी भाषा समझ रहे हैं, हिंदी भाषा मैं बोल रहा हूं और आप हिंदी भाषा समझ रहे हैं। अब सोचना आपको यह होगा कि मैं हिंदी भाषा समझ क्यों रहा हूं। मान लीजिए कि मैं आपसे तमिल में बात करता हूं, मैं आपसे फ्रेंच में बात करता हूं, तो ना आपको तमिल समझ में आएगी अगर आप तमिल भाषी नहीं है तो, और ना आपको फ्रेंच समझ में आएगी अगर आप फ्रेंच नहीं जानते तो। अब फिर सवाल यह है कि आपको तमिल क्यों नहीं समझ में आ रही है या फ्रेंच समझ में क्यों नहीं आ रही है? तो क्या इसका उत्तर ये नहीं हो सकता क्योंकि तमिल के शब्द आपके दिमाग में नहीं, तमिल भाषा आपके दिमाग में है ही नहीं तो समझ में नहीं आ रही है, फ्रेंच भाषा आपके दिमाग में है ही नहीं तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन चूंकि हिंदी भाषा आपके दिमाग में है तो बट नेचुरल है कि वो समझ में आ रही है। तो इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं सिविल सर्विस के क्वेश्चंस को लेकर के कि अगर उस प्रश्न से संबंधित उत्तर आपके दिमाग में कौंध नहीं रहा है, मैं कौंधना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही आप प्रश्न पढ़ते हैं उत्तर आपके दिमाग में कौंध जाना चाहिए, कौंधना होता है ना, जैसे बिजली चमक, अरे इसका तो यह उत्तर होगा, कौंध जानी चाहिए। लेकिन उत्तर कौंध क्यों नहीं रहा है? सोचिए, उत्तर कौंध क्यों नहीं रहा है? उत्तर इसलिए नहीं कौंध रहा है क्योंकि उस प्रश्न का जो उत्तर हो सकता है वह उत्तर आपके दिमाग में नहीं है, चाहे आपने कभी उस पर विचार नहीं किया हो इसलिए नहीं है, चाहे आपने उसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है इसलिए न हो, या यूं कह लीजिए कि चाहे आपने उस टॉपिक को तो खूब पढ़ा है लेकिन इस एंगल से उससे समझा ही नहीं है इसलिए न हो, लेकिन उत्तर आपके दिमाग में नहीं है। उत्तर अगर आपके दिमाग में होगा, याद रखिए जब मैं उत्तर आपके दिमाग में होगा की बात कर रहा हूं तो ये नहीं कि कंप्लीट आंसर आपके दिमाग में होगा, ना कौंधना, अगर एक शब्द भी आपके दिमाग में उससे रिलेटेड आ गया, एक वाक्य भी आ गया, या यूं कह लीजिए कि एक पॉइंट भी आ गया, तो ये हमारे दिमाग की ताकत होती है कि उस एक पॉइंट से हम लिखना शुरू करते हैं और लगातार हमारा दिमाग उससे जुड़े हुए दूसरे पॉइंट हमें प्रोवाइड करता चला जाता है। इसका मतलब यह हुआ मित्रों बहुत ही साफ तौर पर कि हम किसी भी प्रश्न को इसलिए नहीं समझ पाते, जो थोड़े से जटिल होते उन्हें और भी ज्यादा नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनके उत्तर हमारे दिमाग में नहीं होते हैं। और देखिए हमारे दिमाग में उनके उत्तर क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमने उसे ठीक से पढ़ा हुआ नहीं होता है। अगर हम उसे ठीक से पढ़ते तो डेफिनेटली, जिसे मैं कहना चाहूंगा कि समझते, तो उत्तर हमारे दिमाग में होता और प्रश्न हमारे तुरंत समझ में आ जाते, और प्रश्न जैसे ही समझ में आएंगे आप लिखना शुरू कर देते। तो दोस्तों, जो प्रश्न को समझने की जो हमारी समस्या है वह मूलतः हमारे पढ़ने की समस्या से ही जुड़ी हुई है, और जब तक हम अपने पढ़ने की तकनीक को ठीक नहीं करेंगे तब तक, इनफैक्ट सही पूछिए तो हम प्रश्नों को भी समझने के लायक अपने आप को नहीं बना पाएंगे, और इनफैक्ट सच पूछिए मित्रों तो केवल इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोगों ने ये 15 दिन की क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी शुरू की है, ताकि स्टूडेंट को जो पढ़ने का तरीका स्पेशली सिविल सर्विस के लिए होता है वो मालूम हो जाए, और बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो जाए, फिर वह इसी पैटर्न से अपनी पढ़ाई करें और फिर आप देखिए कि कैसे आपको प्रश्न समझ में नहीं आएंगे, आपको तुरंत पता लगेगा कि अरे इस प्रश्न का तो यह उत्तर होगा। तो दुबित्रों, आज के इस मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सभी ये देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी में से एक मेल मुझे प्राप्त हुआ है ममता गौड़ का, जो रुन्हा भोपाल से हैं, हमारी सेवंथ बैच की स्टूडेंट रही हैं। इन्होंने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी रिजल्ट आया है, उसमें उनका एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया है। तो ममता गौड़ा, मैं आपको आपकी इस सफलता के लिए अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी के अपने पूरे साथी की ओर से, और सच पूछे तो आपके सेवंथ बैच के सभी स्टूडेंट्स की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपके और भी अधिक सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। ईमेल लिखने वाले और जो दूसरे मित्र हैं उनके कुछ नाम हैं, अजय भारती जम्मू से हैं, मुकेश ओझा इंदौर से हैं, अखिलेश राजपूत अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, मयूर बंजारे धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं, रमन अभिवृत्ति और आशीष श्रीवास्तव गोरखपुर से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।